आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। आज से राजधानी दिल्ली में 5 दिवसीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपैक्ट समिट शुरू हो रही है। AI से उपज रही चुनौतियों को लेकर पहला AI समिट इंग्लैंड के ब्लेचली पार्क में नवंबर 2023 में हुआ था, जहां 28 देशों ने AI सेफ्टी रिस्क की पहचान को लेकर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद यह समिट मई 2024 में साउथ कोरिया के सियोल और फरवरी 2025 में पेरिस होता हुआ 2026 में पहली बार वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ के किसी देश में आया है। पिछले पेरिस समिट में बड़े रिस्क और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर बातचीत हुई थी, मगर इलेक्ट्रॉनिक्स और IT सेक्रेटरी एस कृष्णन के अनुसार नई दिल्ली समिट पीपल प्लैनेट और प्रोग्रेस यानी इंसान ग्रह और प्रगति जैसे जमीनी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी। उनके अनुसार यह एक उभरती हुई AI पावर और ग्लोबल साउथ की आवाज दोनों के तौर पर भारत की स्थिति को दिखाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दावों के बावजूद भारत ने रूसी तेल खरीद के मामले में एक बार फिर अपनी रणनीतिक स्वायत्तता जताई है। शनिवार को म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अपने जर्मन काउंटर पार्ट योआन वाडाफुल के साथ एक परिचर्चा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में बहुत दृढ़ हैं और यह कुछ ऐसा है जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से भी परे है।
लुक, आई थिंक वन वी आर वेरी वेरी मच वेडेड टू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी because it's very much a part of our history and our evolution. So it's something which is very deep, and it's something which cuts across the political spectrum as well. Where the energy issues are concerned, look, you know, this is today a complex market. I think oil companies in India, as in Europe, as probably in other parts of the world, look at availability, look at costs, look at risks, and take the decisions that they feel is in the best interest.
श्री जयशंकर ने यह वक्तव्य अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के उसी दिन म्यूनिख कॉन्फ्रेंस में किए गए दावे कि अमेरिका को भारत से अतिरिक्त रूसी तेल खरीद रोकने का कमिटमेंट मिल गया है के फौरन बाद दिया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP के चेयरमैन तारिक रहमान 17 फरवरी को बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं को इस समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार इस समारोह में भारत की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल होंगे। उनके साथ विदेश सचिव विक्रम मिश्री भी रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 17 फरवरी को मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पहले से निर्धारित द्विपक्षीय बैठक के कारण ढाका नहीं जा रहे हैं। उन्होंने श्री रहमान को फोन पर बात कर बधाई देने की सूचना एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैंने उन्हें बांग्लादेश चुनाव में शानदार जीत के लिए बधाई दी। दो करीबी पड़ोसियों के तौर पर जिनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते बहुत गहरे हैं, मैंने दोनों देशों के लोगों की शांति, तरक्की और खुशहाली के लिए भारत की लगातार प्रतिबद्धता को फिर से पक्का किया। संसद के बजट सत्र का पहला चरण शुक्रवार को हंगामे के बाद समाप्त हुआ। अब दोनों सदनों की कार्यवाही 9 मार्च से शुरू होगी और 2 अप्रैल तक चलेगी। शुक्रवार को सदन शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने एप्स्टीन फाइल्स के आधार पर हरदीप पुरी इस्तीफा दो के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे सत्ता पाने के लिए देश के बंटवारे की प्लानिंग कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने भी श्री गांधी पर तंज कसते हुए उन्हें जिंदगी में कामयाब होने के लिए प्रधानमंत्री की पाठशाला में जाने को कहा। उधर श्री गांधी ने शुक्रवार को संसद भवन परिसर में देश भर के किसान संगठनों के नेताओं से भारत अमेरिकी अंतरिम व्यापार समझौते से किसानों व खेत मजदूरों की रोजी रोटी बचाने के मुद्दे पर बात की। बैठक में इस समझौते के विरोध में बड़े स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन करने पर भी बात हुई। बैठक के बाद श्री गांधी ने एक्स पर एक वीडियो जारी कर सरकार की अमेरिका के साथ हुई व्यापार समझौते पर कड़ी आलोचना की।
नरेंद्र मोदी जी के एक मंत्री ने बोला कि अगर हम भी US कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो हमें भी वो फायदा मिलेगा, मगर सच्चाई है कि हमारा कॉटन बांग्लादेश जाता है, हमारा कॉटन हिंदुस्तान की टेक्सटाइल मिलों को चलाता है। तो अगर हमने बांग्लादेश का रास्ता चुना तो हमारे पूरे के पूरे कपास के किसान और कॉटन की इंडस्ट्री खत्म हो जाए, और अगर हमने नहीं चुना तो हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खत्म हो जाए। ये सच्चाई है पीयूष गोयल जी, झूठ मत बोलिए। इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं, क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा या फिर दोनों को उड़ा दे। इनके मंत्री को ये भी नहीं मालूम कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान से कपास नहीं खरीदेगा और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो US से कॉटन इंपोर्ट। ये है US डील, नरेंद्र मोदी जी की डील।
कांग्रेस ने तेलंगाना नगर निगम चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल की है। 11 फरवरी को हुए 116 नगर निगमों के 2582 वार्ड्स के चुनाव नतीजों में कांग्रेस ने 1347 वार्ड्स में जीत दर्ज की है, जबकि भारत राष्ट्र समिति 716 वार्ड्स में जीत के साथ दूसरे स्थान पर रही। भारतीय जनता पार्टी को 261 वार्ड में जीत मिली। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी शहरी लोकल बॉडीज में अपना असर दिखाया। उसने 4 नगर निगमों में 22 वार्ड और 15 नगर पालिकाओं में 40 से ज्यादा वार्ड जीते, जबकि 195 वार्ड्स अन्य पार्टियों और स्वतंत्र उम्मीदवारों के खाते में गए। कांग्रेस ने इस जनादेश को उन नीतियों पर भरोसा बताया है जिसमें किसानों, युवाओं, महिलाओं और सबसे कमजोर लोगों को प्राथमिकता दी गई है। और अब समाचार खेल जगत से। राजनीति से गर्माए IPL T20 विश्व कप में भारत ने रविवार को पाकिस्तान को 61 रनों से हरा दिया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। आक्रामक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के शून्य पर आउट होने के बावजूद भारत ने अच्छी शुरुआत की। दूसरा विकेट 88 रन पर ईशान किशन का गिरा, जिन्होंने मात्र 40 गेंदों पर 77 रन बनाए। लेकिन साइम अयूब और मोहम्मद नवाज की नपीतुली गेंदबाजी से भारतीय बल्लेबाज खुलकर हाथ नहीं आजमा पाए। तिलक वर्मा के 25, सूर्य कुमार यादव के 32 और शिवम दुबे के 27 रनों की बदौलत भारत 7 विकेट पर 175 रन बनाने में कामयाब रहा। अयूब ने 25 रन देकर 3 विकेट लिए। पाकिस्तान की स्थिति शुरुआत से ही खराब रही और उसके 4 महत्वपूर्ण विकेट मात्र 33 रन पर ही गिर गए। उस्मान खान ने 44 रन और शाहीन अफरीदी ने 23 रन बनाकर पाकिस्तान को कुछ राहत तो दी, मगर भारतीय गेंदबाजों की सदी हुई गेंदबाजी और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खराब शॉट्स की वजह से पाकिस्तानी टीम खेल में बिल्कुल भी वापसी नहीं कर पाई और 18 ओवर में केवल 114 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट चटकाए। प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार ईशान किशन को उनकी धमाकेदार पारी के लिए दिया गया। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।